तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी परदा नशीनी का अंजाम है ढूंढता, आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता मजहब में है तेरे चर्चे बयां। शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां, धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां। शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहां, सबके भगवान अपने ही अपने जहां। ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ, तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की जहमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की जहमत क्यों की। खेल कैसा गजब था गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, क्या काम है।
ओम शांति। किस किस को आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? सभी को लगभग। और जिनको स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई दे रही वो जरा हाथ खड़ा करे, क्योंकि एक जन आके हमें बोला कि आवाज हमें क्लियर नहीं सुनाई देती, इसलिए हमने कहा पूछ ले उसके हिसाब से भाई आवाज को थोड़ा तेज करे। ठीक है ना, ये आवाज तेज करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना? ओके। बहुत सुंदर गीत हमने सुना, इसके अंदर जो भाव थे, जो प्रश्न थे भगवान से, वो सिर्फ गीतकार के थे, गायक के थे, या हम सबके हैं? हम सबके हैं ना, जबकि हम जानते हैं कि हम सभी ने अपने अपने दिल में अपनी अपनी आस्था अनुसार उस भगवान की छवि बिठाई भी है, बावजूद उसके हम उसको ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जबकि बिठाई भी है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे प्रश्न हम उससे कर रहे हैं, इसका मतलब हमें भी निश्चय नहीं है कि जो छवि मैंने बिठाई है वो वास्तव में उसकी है किसकी है ना? तो ये परमात्मा का मतलब हम चाहते हैं उससे ही प्रसवाल कर रहे कि तू अपना सही परिचय दे मुझे कि आखिर तू कौन है, क्योंकि तेरे बारे में खूब चर्चाएं चल रही है लेकिन इन सब में आखिर सत्य क्या है उसमें हम मूंझ गए हैं, इसलिए आप ही आओ और आकर हमें सत्यता से परिचित कराओ। तो परमात्मा पिता इस धरती पर आकर जो अपना परिचय देते हैं उस परिचय से आप सबको वाकिफ कराने के लिए हमारे बीच में पधारी है हमारी आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी से। गीता दीदी जी, उनका हम एक हाथ ऊंचा उठा करके स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। गीता दीदी जी भी लगभग बाल्यकाल से कहें या यूं कहें कि जब आपने 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पास की उसके तुरंत बाद आपको ये ज्ञान मिला और उस ज्ञान का रंग आप पर ऐसा चढ़ा कि हालांकि आपने वो मेरिट लिस्ट में एग्जाम पास की थी लेकिन इस बाबा के ज्ञान के सामने वो सब उनको फीका लगने लगा। आगे की पढ़ाई डिस्कंटिन्यू करके इस परमात्मा पढ़ाई में अपना जीवन उन्होंने 1969 में समर्पित किया। चूंकि आप सूरत की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, गुजरात से हैं, तो पहले गुजरात की ही धरनी में रहकर आपने सेवाएं दी अलग अलग सेवा केंद्रों पर, भावनगर, भरूच, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर, और उसके बाद 1993 में आप हेडक्वार्टर में आए और हेडक्वार्टर में जो हमारा दूसरा कैंपस है जहां पर आप कल जाएंगे ज्ञान सरोवर में, वहां पर करीब कई वर्षों तक 18-20 वर्षों तक आपने अपनी सेवाएं दी। और फिर हमारा जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है शांतिवन, क्योंकि दिनों दिन हमारी सेवाएं वृद्धि को पा रही है, एक के बाद एक कैंपस बनते जा रहे हैं, तो वहां उनकी आवश्यकता पड़ी। तो पिछले 5-6 वर्षों से आप नीचे शांतिवन परिसर में रहते हैं और वहां से तो हेडक्वार्टर, तीनों ही कैंपस हमारे हेडक्वार्टर ही कहे जाते हैं, तो हेडक्वार्टर में बेस्ड रहकर आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं, परमात्मा का संदेश सब तक पहुंचाते हैं। और हमारी जो एक विंग है बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, उस विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और कुशल राजयोग शिक्षिका है। और इसके साथ साथ जैसे आपने यहाँ पे भट्टी भट्टी शब्द बार बार सुन रहे होंगे, है ना, भट्टी शब्द सुना आज करुणा भाई जी ने भी लास्ट में यही कहा भट्टी का लक्ष्य। जो पुराने हैं वो तो समझ जाते होंगे, नयों को लगता होगा ये भट्टी क्या बोली जा रही है। तो एक्चुअली जो हमारे रेगुलर बीके स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रोग्राम इस ग्रुप से पहले चले जिनको हम भट्टी कहते हैं। भट्टी माना पकना, भट्टी में जो चीज जाती है जिस रूप में गई उस रूप में लौट कर नहीं आएगी, परिवर्तित रूप होगा। तो भट्टी माना गहन योग तपस्या करके अपने जीवन में अंदर अंतर मन में परिवर्तन लाना। जो कहा ना कि हम ऑलरेडी हमारा मूल संस्कार तो प्रेम का, खुशी का, आनंद का है, लेकिन बाह्य इनपुट जो मिल रहा है वो निगेटिव होने के कारण हम उस मूल संस्कार को भूलकर निगेटिव होते जा रहे हैं। तो भट्टी में तपकर उस निगेटिव को निकालना और उस पॉजिटिव को प्रैक्टिकल में उतारना ये लक्ष्य होता है। तो ये रिट्रीट भी एक तरीके से भट्टी ही कहेंगे, क्योंकि जैसे अभी कहा हाँ आस्था तो आस्था अनुसार भगवान की छवि जरूर है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी प्रश्न है ना। तो इन सच्चाइयों पर प्रकाश डालने के लिए दीदी हमारे बीच में है। तो देश विदेश में भ्रमण करके सब तक आप आध्यात्मिकता का संदेश पहुंचाते हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, और जैसे कहा राजयोग शिक्षिका, और जो भट्टी के प्रोग्राम होते हैं उनके भी आप फैकल्टी मेंबर हैं। तो बहुत विशेषताओं से संपन्न हमारे आदरणीय गीता दीदी जी हम सबके सामने परमात्मा का सत्य परिचय रखेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम समझने जा रहे हैं। अगर ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो भाग्य ही खुल जाएगा, क्योंकि अभी हमारा विषय है वो परम शक्ति परमात्मा कौन है जिससे हमें योग लगाना है। ये तो आपने समझ लिया कि योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन है, कौन है? आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। ये समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं है। देखने में तो शरीर आ रहा है लेकिन हम शरीर नहीं है। देखने में तो ट्यूब आ रही है कि ट्यूब लाइट दे रही है, बल्ब प्रकाश दे रहा है, हीटर गर्मी दे रहा है। देखने में साधन आता है लेकिन वास्तविकता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होती है। इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है, इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है। तो देखने में शरीर आता है पर हम शरीर नहीं हैं। हम चैतन्य शक्ति हैं, आत्मा हैं, जो शरीर द्वारा कर्म करती हैं। तो मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, मैं और मेरा। ये शब्द कितनी बार हम बोलते हैं? सारे दिन में मैक्सिमम यूज होने वाला शब्द कौन सा है? मैं और मेरा। ग्रामेटिकली भी दोनों शब्द अलग अलग हैं। क्या हमें स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है? इसी मूल सत्य को हमें यहां समझना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ। पर मैं मुख नहीं हूँ, आंख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की राजा, इस शरीर की मालिक आत्मा। तो राजयोग की पहली प्रैक्टिस है खुद को आत्मा समझना, अपनी रियल आइडेंटिटी को याद रखना। अब आपको स्पष्ट है कि शरीर स्त्री है, शरीर बंद, अच्छा कहां बज रहा, हाँ, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है ना? मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं गलत, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। तो अब तक हम रॉन्ग कॉन्शियसनेस में जीते रहे हैं, फॉल्स आइडेंटिटी में जीते रहे हैं। जीवन का ये मूल और प्रथम सत्य हमें याद रखना है और उसकी रियलाइजेशन में रहना। तो पहले लेसन से अगर तीन अभ्यास आप रोज करेंगे तो बहुत जल्दी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। पहला अभ्यास है आत्म स्मृति। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति। हमें स्पष्ट हो कि शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल, शरीर भी एक मटेरियल। जैसे ये सारी चीजें मैटर से बनी है, ये कुर्सी है, सोफा है, टेबल है, स्टैंड है, चित्र है, मकान है, पर्दे हैं, इन आंखों से जो भी चीजें हम देखते हैं वो किससे बनी है? मैटर से बनी, प्रकृति के पांच तत्वों से बनी। तो जैसे ये चीजें नॉन लिविंग है, जड़ है, शरीर भी तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है। मैं आत्मा चैतन्य हूं, शक्ति हूं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। ये अवेयरनेस अब हमें रहनी चाहिए। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि। आप जिसको भी देखें, मिलें, बातचीत करें, उनके मस्तक में देखें, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। हमें हरेक को आत्मा नजर से देखना, देह दृष्टि से नहीं देखना है। हमें स्पष्ट हो कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मैं शरीर से अलग आत्मा शक्ति। और तीसरा अभ्यास आत्मा धर्म में स्थित होकर कर्म करना। देह धर्म भिन्न भिन्न है ना, देह धर्म से कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर हम आत्मा हैं और सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। हरेक आत्मा के असली गुण धर्म कौन से हैं? आज बताए ना सुबह, हरेक आत्मा की ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ से, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी से नहीं करना है। अगर ये 3 अभ्यास प्रतिदिन बार बार आप करेंगे, बहुत जल्दी अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सकेंगे, और आप महसूस करेंगे मन अंतर्मुखी बनने लगेगा, आप स्वयं के प्रति फोकस होने लगेंगे, केंद्रित होने लगेंगे, कर्मेंद्रियों पर संयम का अनुभव होगा। तो राजयोग की पहली प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियस बनना, देह भान से न्यारा आत्मभान में स्थित होना। अब केवल आत्मचिंतन को योग नहीं कहे, योग शब्द 2 सत्ता के मिलन को कहा जाता है। जैसे वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना, सेपरेशन, योग मीन्स मिलन मनाना, कनेक्शन करना, रिलेशन स्थापित करना, उसे योग कहते। तो स्वचिंतन के द्वारा मन समेटने के बाद अगर हम स्वयं को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, डिविनाइज करना चाहते हैं, तो आवश्यक है हम उस ऑलमाइटी परमात्मा से अपने आप को जोड़े। हमें अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है। हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, यूज करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो हम पावर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, रिचार्ज करते हैं। हम भी अनेक कार्य करते हैं, अनेक जिम्मेवारियां उठाते हैं, हम अनेक सिचुएशंस फेस करते हैं, आवश्यक है खुद को एम्पावर करने। हम महसूस करते हैं कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जो हमारी मेन 3 एक्टिविटी है, सोचना, बोलना और करना, ये हमारी तीन मुख्य एक्टिविटी है जो चैतन्य आत्मा से संबंधित है। हम महसूस करते हैं, ये जो हमारी मुख्य तीन एक्टिविटी है उस पर कंट्रोल नहीं है। जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाते, जो नहीं सोचना चाहिए वो बार बार सोचते रहे, है ऐसा? जिस बात के लिए हम सोचते हैं कि बस अब ये बात मुझे याद ना आवे, ये मेरे मन में ना आवे, वो बातें फिर फिर याद आती रहती। जिस पर चिंतन चलना चाहिए, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, तो वो नहीं चलता है। इसलिए आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी करते हैं, पर चिंतन, संसार चिंतन, शरीर चिंतन, व्यर्थ चिंतन घंटों कर सकते हैं, उसके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं रहती। तब कहते हैं कि अरे बातें करने में 2 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला, ऐसे कहते। देर रात तक तेरी मेरी बातें करते हैं, उसमें किसी को भी नींद नहीं आती। और यहाँ हम 5 मिनट आत्मचिंतन में बिठाते हैं तो भी लोग सो जाते, नींद आ जाती। जो चिंतन करना चाहिए वो नहीं हो रहा,
भाई गर्मी हो रही,
वो नहीं हो रहा। जो नहीं करना चाहिए वो चलता है, जो नहीं बोलना चाहिए कहते हैं मुख से निकल गया, फिर सॉरी भी करते रहते। जो नहीं करना चाहिए उसमें उलझ जाते हैं, फिर कहते हैं फालतू फंस गए। ये हमारे जीवन की सिचुएशन है कि जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, दूसरों के हाथ में चला गया। अब आप बताइए, घर में आप टीवी ले आते हैं, उसका रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे आते हो क्या? कि भाई जो दिखाना चाहो वो दिखाओ, ऐसे कहते नहीं। टीवी का रिमोट कंट्रोल घर का हर सभ्य चाहेगा मेरे हाथ में हो, ताकि मैं जो देखना चाहूं वो देख सकूं। और जीवन का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में है नहीं है, परमात्मा के हाथ में तो देते ही नहीं है, दूसरों के हाथ में चला गया। तो ये निशानियां क्या बताती हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हमें अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करने की आवश्यकता है। और दिन प्रतिदिन आप क्या देख रहे, परिस्थितियां जटिल हो रही है या इजी हो रही, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे, ट्रैफिक बढ़ रहा है या कम हो रहा, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे। हमें अपने आप को और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है और इसलिए योग की आवश्यकता है। परमात्मा जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी, शक्ति दाता, हम सदा गाते रहे हैं, कहते रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि वो दाता है कौन, वो स्पिरिचुअल पावर हाउस कौन है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। ये भी हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहते, और ये विवेक की बात है कि परम सुप्रीम हाईएस्ट ऑन हाई फाइनल अथॉरिटी एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती, अनेक नहीं हो सकती। जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए, और आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं। सारी दुनिया की बात छोड़े, अभी आप जितने यहां बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं परमात्मा कौन है, क्या एक जवाब आएगा? आएगा आप सबके तरफ? नहीं, हर एक अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, मान्यता अनुसार बताएंगे। जिसको श्री राम में श्रद्धा है वो कहते हैं श्री राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहेंगे श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि ये जो प्रकृति है वो ही परमात्मा है, कोई आत्मा को परमात्मा समझते हैं, इसलिए कई अपने आप को ही भगवान कहलाते, कई सब में भगवान है ऐसी भावना रखते हैं। एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हो गई हैं, यही कारण है आज अनेक धर्म, संप्रदाय, मठ पंथ बन गए, सिद्ध है। एक परमात्मा के बारे में अनेक मतें सिद्ध करती हैं परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते। परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं तब तो अनेक मतें हैं। परमात्मा का सत्य परिचय कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं ही प्रकट होता है, कहते हैं ना, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और अपना सत्य परिचय देते हैं, तब तो हम कहते हैं परमात्मा को। क्यों आज अनेक धर्म है, शास्त्र है, ग्रंथ है, अनेक खोजें हो रही हैं, संसार में अनेक विद्वान हैं, क्यों ईश्वर को हम कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि परमात्मा आकर सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं। परमात्मा खुद सत्य ज्ञान देते हैं, तो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को अपने सत्य परिचय की जो परिभाषा हमें बताई है, वो परिभाषा में पहले आपके सामने रखूंगी कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसकी कसौटी है, नापदंड है जिससे हम वेरीफाई करें और समझें कि परमात्मा का ये सत्य परिचय। तो मैं 5 बातें आपके सामने रखती हूं। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म की आत्माएं मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व की आत्माओं के पिता है, इसलिए परमात्मा केवल उसे ही कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म की आत्माएं मान्य करती। कुछ लोग माने, दूसरे न माने, उसको परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। हम सब खुद जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो जन्म लेते हैं प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? शरीर क्या है? प्रकृति है, 5 तत्व प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, कर्म बंधन में बंधते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकती है। शरीर धारण करते ही कर्म बंधन में बंधने लगती है। हम देह संबंध में बंधते, बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, पोता है, भाई है, वो रिलेशन में बंध जाता। जो जन्म लेता है सुख दुख के बंधन में बंधता है। परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के कर्म के प्रकृति के बंधन से न्यारा। हम सभी भक्ति में सदा परमात्मा से क्या मांगते रहे हैं? क्या मांगते रहे हैं? हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें ये भव के बंधन से छुड़ाओ। मोक्ष मांगते रहते, अंडरस्टूड है कि जो स्वयं मुक्त होगा वही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा उससे कहते हैं जो सभी बंधनों से मुक्त है। तीसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं, परमात्मा से ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक बन सके। वो स्वयं ही परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु। पिताओं का पिता कहते, शिक्षकों का शिक्षक कहते, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उसे। उसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं। चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो अपनी स्थिति में, गुणों में, कर्तव्यों में सदा परम है, सदा परम है। ऐसा नहीं आज परम है, धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, अधम हो जाएंगे, उसको परमात्मा नहीं कह सकता। जो सदा परम, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील, एक रस। इसलिए हम कहते हैं सदा पावन, सदा शिव, सदा मुक्त, फॉर एवर। केवल परमात्मा की महिमा में कहते, आज सुबह आत्मा के परिचय में आपने सुना है हम आत्माएं ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, शांत है, पर समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर आज हम पतित, दुखी, अशांत बन गए। हमारे गुण कर्म स्थिति बदलते हैं, परमात्मा सदा अपने गुणों में, कर्म में परम कल्याणकारी। इसलिए लोग कहते हैं परमात्मा को पहचानना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो अपने गुणों में सदा स्थित है। और ये लोग कहते हैं इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर घड़ी अपना रंग बदलता रहता है। पांचवी बात, परमात्मा वो ही हो सकता है जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है। सर्व ज्ञाता है, माना ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, संसार के आदि मध्य अंत को जानता है, वो ही आलोक परलोक का ज्ञान देता है। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। आत्माओं के लिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आत्माएं अल्पज्ञ है। परमात्मा के लिए हम कहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है और सदा दाता है, सदा दाता है, देते ही रहते हैं, देने के लिए ही आते हैं। इसलिए हम भक्ति में महिमा करते हैं शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता। हम उसकी कितनी महिमा करते कि वे सदा दाता है। हम मनुष्यत्माएं सदा दाता नहीं है, है? है नहीं, हम सदा दाता नहीं। बेशक हम पहले दाता थे, देवता थे, देवी देवता मीन्स दाता, देने वाले। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, हाँ? दाता, वरदाता। पहले हम देवता थे, आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज क्या बन गए हैं? हैं? लेवता। देवता नहीं रहे हैं, आज क्या बन गए हैं? लेवता। हमें हरेक से चाहिए चाहिए चाहिए, हैं? परमात्मा सदा दाता है। तो परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए। अब आप विवेक से बताइए सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते? हम तो अनेकों को परमात्मा मानते रहे हैं, पर इस परिभाषा को सामने रखकर अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप विवेक से सोच के बताइए। सबसे पहली बात, क्या कोई शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा कह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। शरीरधारी महात्मा हो सकते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा भी बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके प्राप्त कर ले। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते। जैसे एक बच्चा पिता जैसा रूपवान धनवान विद्वान बुद्धिवान गुणवान बलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है, रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। तो ये अपनी बुद्धि में स्पष्ट कर लीजिए, कोई देहधारी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। अंडरस्टूड है। दूसरी बात कि जो भी साधु सन्यासी हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, जो भी साधु संत है, हम उन्हें महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है पीछे वालों को? हम इन्हें महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही परिचय न जानने के कारण लोग थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखते हैं, उनको ही भगवान समझने लगते। लेकिन नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट अपने चिंतन में लिखा है कि जो छोटे जादूगर होते हैं वे छोटे छोटे जादू करते हैं, परमात्मा महान जादूगर है। वो छोटे छोटे जादू नहीं करते हैं, अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि नहीं करते हैं, वो हमारे पूरे जीवन को ही श्रेष्ठ बना देते। तो ये महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि रंगमंच पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, कौन कौन से धर्म स्थापक हुए हैं? इतिहास जानते हैं ना? चाहे इस्लाम धर्म के अब्राहम है, यहूदियों के हजरत मूसा है, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक जी हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अशोक जरथुस्ट हैं, ये जो भी धर्म स्थापक हुए हैं वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। खैर, इन धर्म स्थापकों ने स्वयं भी सत्य बताया है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने स्वयं अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, ये उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो समय बीतने के बाद अपने धर्म स्थापक में ही सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात, बहुत ध्यान से निष्पक्ष भाव से विवेक से समझनी है। हम हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं, हिंदू भाई बहने कितने देवी देवताओं को मानते हैं? हम जितने भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राधे कृष्ण है, श्री राम सीता है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली है, जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो एक है, देवी देवताएं अनेक। क्या इन देवी देवताओं को विश्व के सभी धर्म मान्य करते हैं? करते हैं? नहीं। अच्छा, और धर्मों की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? नहीं मानते। आप यूपी बिहार साइड जाइए, राम के चुस्त भक्त कृष्ण को नहीं मानते, धूप नहीं सुंगते, प्रसाद नहीं लेते। जब ये देवी देवताएं हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों को भी मान्य नहीं है, हम विश्व के सभी धर्म की आत्माओं के पिता परमात्मा उनको कैसे कह सकते? तो ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनको जन्म मरण से मुक्त स्वयं भू बताया गया, जिनके कोई माता पिता नहीं दिखाए हैं, ऐसा कोई स्वरूप है? ऐसा कोई स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, स्वयंभू बताया, ऐसा कौन सा स्वरूप? स्वरूप कौन सा है? तो देखिए, मुंझने की बात नहीं। परमात्मा के लिए हम कौन से विशेषणों का प्रयोग करते हैं उनकी महिमा में, कि वे अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार निरंजन कर्मातीत हम उससे कहें। तो परमात्मा का सर्व धर्म को मान्य ऐसा स्वरूप है जो परमात्मा शब्द से ही सिद्ध होता है। परमात्मा को जानना सबसे सहज है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल है वो भी आत्मा। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुण और कर्तव्यों से परम ऊंचे से ऊंचे। इसलिए हम कहते हैं रूप ज्योति बिंदु है लेकिन गुणों के सिंधु है। परमात्मा का दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को भी मान्य है। चित्र में आप देखिए, हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते। जानते हो ना, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। शिवलिंग शिवालय हर शहर गांव गली गली घर घर में पाए जाते हैं। रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखा। वृंदावन गोपेश्वर में जाएंगे, श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाया है। एक और सोचने की विवेक की बात बताएं, इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाया। शंकर जी को तपस्वी हम कहते, जोगी कहते। देखे हैं ऐसे चित्र, आगे शिवलिंग है और शंकर जी को ध्यान मुद्रा में दिखाया। सोचने की बात है, शंकर जी स्वयं परमात्मा है तो वो किसके ध्यान में बैठे? परमात्मा को तो कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा के ऊपर तो और कोई है ही नहीं। शंकर जी तपस्वी मूरत कहे जाते हैं, मीन्स उनके ऊपर भी कोई परम शक्ति है जिसको ही परमात्मा कल्याणकारी शक्ति कहते हैं। इसलिए भारत में रामेश्वर, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ परमात्मा के निराकार दिव्य स्वरूप को जहां ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसको देवों का देव त्रिदेव रचयिता कहा जाता है। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है। हम हिंदी में कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वे अरबी भाषा में कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। जीसस क्राइस्ट ने कहा है गॉड इज लाइट। चित्र में आप देखिए, बौद्धिस्ट भाई बहने जापान के महायान पंथी बौद्धिस्ट शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं और उस प्रतीक से ध्यान केंद्रित करते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी को गौतम बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया है, तपस्या करते हुए दिखाया है, तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, वो है परम शक्ति परमात्मा जिससे अवेयरनेस आती है। गुरु नानक जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक ओंकार निराकार सत्यनाम एक अकाल मूरत परमात्मा की महिमा की है। उन्होंने कोई शरीरधारी को परमात्मा नहीं कहा। तो विश्व के जितने भी धर्म हैं, उनके जो भी मूल धर्म स्थापक है, उन सबका इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक आकार नहीं है, इसलिए निराकार के। उनका अपना दिव्य आकार है ज्योति बिंदु स्वरूप। और एक सिंपल लॉजिक, एक मनुष्य आत्मा का पिता कैसा होता है, कैसा होता है, कौन से आकार का होता है? मनुष्य आत्मा मनुष्य आकार का ही होता है ना। एक मनुष्य आत्मा का पिता मनुष्य आत्मा है, एक पशु का पिता पशु है, एक पंछी का पिता पंछी है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब ये बुद्धि में स्पष्ट करेंगे कि जैसी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम नहीं है। हमारे नाम शरीर से है ना? मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा नाम भी समाप्त हो जाएगा ना? नया शरीर लेंगे नया नाम मिलता है। हमारे नाम शरीर से है। परमात्मा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। उनका नाम उनके गुण और कर्मों को सिद्ध करता है। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी, जिसको सब कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी है, सुंदर सदा पावन है। वैश्यक भक्ति में उनके अनेक कर्तव्यवाचक नाम है, अनेक गुणवाचक नाम है। ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, हमें ये नामों की लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ईश्वर के गुण और कार्य से है। हम उनके मूल नाम को याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से हम यहाँ शिव बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स, बाबा माना पिता, बाबा माना कोई साधु बाबा नहीं, बाबा मीन्स पिता, शिव पिता, परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे खुशी और गर्व की बात है हम परमात्मा के बच्चे हैं, है खुशी? देखो एक भी नहीं बोलता है, वंडरफुल। हाँ, किसी को खुशी नहीं है हम भगवान के बच्चे हैं, है? देखो आज कोई ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति के बेटे को नशा है, मेरे पिता ऑफिसर है, मिनिस्टर है, और हमें नशा नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि ना हम अपने आप को जानते हैं, ना पिता को पहचानते हैं, ना हमारे प्रैक्टिकल रिलेशन है, ना प्राप्ति है, तो खुशी भी नहीं है, नशा भी नहीं है। अब हमने पिता का सही परिचय प्राप्त किया है, अब हमें उनसे संबंध जोड़ना है, योग लगाना है, तो याद से ही प्राप्ति, हमें ये खुशी हो हम भगवान के बच्चे। जो पिता परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों का सागर है, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, अखुट भंडार है और दाता है, दाता है। इसलिए चित्र में कंपैरिजन किया है कि परमात्मा इटर्नल फाउंटेन के समान, जैसे एक फाउंटेन शीतल जल की धारा बहाता रहता है, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के सागर है, वो निरंतर शांति सुख आनंद प्रेम शक्ति की अजस्त्र धाराएं बहाते ही रहते हैं। हमें फव्वारे से मांगना नहीं पड़ता है कि शीतलता दो, हम उनके नजदीक जाते हैं, हमें शीतलता का अनुभव होता है। हमें अग्नि से मांगना नहीं पड़ता है गर्मी दो, हम उनके समीप जाते हैं गर्मी का अनुभव होता है। हमें परमात्मा से मांगना नहीं है, पिता दाता है और बच्चे मंगता, मांगते ही रहते हैं ना। कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर वास्तव में क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुम याद नहीं करते थे, तुम तो फरियाद ही करते रहते थे। हमें मांगना नहीं है, हमें उनका बन जाना है, उनको अपना बना लेना है। मैं आत्मा उनका बच्चा हूँ, शिव बाबा मेरे पिता है। हमें ये रिलेशन जोड़ना है, फॉलो करना है, उसे योग कहते। योग कुछ और नहीं है। आप सोचते होंगे कि ये तो हमारा आधा दिन पूरा हो गया, योग कोई सिखा ही नहीं रहा है। योग कोई क्रिया नहीं है, योग मीन्स याद करना, परमात्मा को प्यार करना। अब आप बताओ, याद करना और प्यार करना सबको आता है कि नहीं आता है? आता है ना? अब खुद को शरीर समझते थे तो शरीरधारियों को याद करते थे, प्यार करते थे। अब समझ में आया ना कि हम आत्मा हैं, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा हैं। अब उनको याद करना, प्यार करना, उस याद प्यार में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं, उससे योग कहते हैं। ऐसे पिता परमात्मा अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू मंत्र नहीं करते हैं। परमात्मा ये काम नहीं करते हैं, ये काम मनुष्य गुरु भी करते हैं। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। वो कौन सा कार्य करते हैं? वे हमें पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व विकारों के पंजे में फंस जाता है, हर मनुष्यात्मा पतित बन जाती है, तब परमात्मा आते हैं, सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। न सिर्फ पावन बनाते हैं, वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। न सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं, परमात्मा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। विश्व परिवर्तन, विश्व पिता परमात्मा ही कर सकता है। और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। अगर वो आते ही ना हो, हमें मिलते ही ना हो, तो हम उससे क्यों याद करते हैं? हम उससे क्यों बुलाते हैं? जरूर परमात्मा कभी आए हैं, हमें मिले हैं, हमने उनसे प्रेम सुख शांति पाया है, तब तो हम याद करते हैं। वरना हमने कैसे जाना कि तू प्यार का सागर है? तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं, कब आते? कौन सा श्लोक बोलते हैं भक्ति में? देखो, हरेक भारतवासी जानता है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना कब? जब जब माना कब, एग्जैक्टली कौन सा समय, कलियुग का अंत, अति धर्म ग्लानी का समय है, न कि सतयुग का अंत, न कि त्रेता का अंत, न कि द्वापर का अंत, कलियुग का अंत अति धर्म ग्लानी का समय है, जब परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। चित्र में आप देखिए, कलियुगी पतित मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देकर पवित्र योगी बनाते, उस तरफ कलियुग हेल दिखाया है। कलियुगी साधारण नर नारी परमात्मा के रचे इस ज्ञान यज्ञ में ज्ञान और योग की शक्ति से जब खुद की बुराइयों को स्वाहा करते हैं, पवित्र योगी बनते हैं, तो वे आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनते हैं। आप सभी भाई बहनों को यहाँ आमंत्रित करके हमें यही तो संदेश आप सबको देना है कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और इस ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, इस विश्व परिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश पर जो नर नारी विषय वासनाओं को खत्म करेंगे, अपने वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे, वे मालिक बनेंगे। कौन कौन बनना चाहेगा? आंख बंद करके हाथ ऊपर करो, एक दो को देख के नहीं। हाँ, कौन परमात्मा की आज्ञा पर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में पवित्र योगी जीवन का सहयोग देंगे, वे हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छे, अब ताली बजाओ खुद के लिए। अब मैंने देखा कईयों ने हाथ नहीं उठाया, कई सोचते हैं उन्होंने शायद इसलिए हाथ नहीं उठाया कि हम हाथ उठाएं और कर ना सके, तो ये सोचकर हाथ नहीं उठाए। पर भाइयों और बहनों, भगवान हमें बहुत महान श्रेष्ठ अच्छा बनने की बात कहते हैं, उसमें हाथ न उठाने का तो सवाल ही नहीं। कोई आपको भ्रष्टाचारी लॉफर गुंडा बनने का है तो आप हाथ न उठाओ, पर आपको पवित्र योगी महान श्रेष्ठ देवता बनने की बात कहें तो खुशी से उठाना है। अच्छा, आप जितना भी करेंगे, 5% भी पुरुषार्थ करेंगे तो 5% भी प्राप्त करेंगे ना, नुकसान तो नहीं है ना, जितना करेंगे उतना फायदा है। और भगवान तो एक का पदम गुणा दे रहा है। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय है, सबको स्पष्ट रहे परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं। युगे युगे आते तो कलयुग क्यों हुआ? कलयुग क्यों हुआ? परमात्मा ने आके क्या किया? इसलिए युगे युगे नहीं आते हैं, हर कलयुग के अंत संगम युग में आते हैं और विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स वे इस दुनिया में नहीं रहते हैं। वे इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अगर वो इस दुनिया में ही रहते होते तो हम क्यों कहते हैं कि वे आते हैं, अवतरित होते हैं? आप यहाँ हाजिर हैं, उपस्थित हैं, तो मैं थोड़ी कहूंगी कि आप आएंगे, आप आ रहे हैं, अब है ही है। परमात्मा इस दुनिया में ही होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते हैं? जरूर परमात्मा का कोई और निवास स्थान है जहां से वे सृष्टि पर आते। और आज सुबह आपने समझा है कि यह दुनिया हमारा भी घर नहीं है। समझा है ना? हाँ, ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है। है घर, हर कोई जानता है, कहता है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। दुनिया मुसाफिर खाना है। ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? जो हम आत्माओं का असली घर है, चित्र में सबसे ऊपर परमधाम दिखाया है, जहां हम ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं, जो हम आत्माओं का असली घर है वो ही पिता परमात्मा का भी असली घर है। परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, इसलिए परमात्मा को जब याद करते हैं तो बुद्धि और नजर कहां जाती है? ऊपर जाती है। हम कहते हैं ऊपर वाला। परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? ऊपर वाला। यहां वाला नहीं, यहां वाला नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाला। परमात्मा परम धाम के निवासी हैं, कलयुग अंत संगम युग में सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, और वो ही सत्य ज्ञान का सार आप सुन रहे हैं। हाँ भाइयों और बहनों, ये कोई ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। ऐसे ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, सुखदाता सदा पावन पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए? कितना याद करना चाहिए? थोड़ा हाथ से बताओ खुशी से। कितना याद करना चाहिए? पर क्या हम इतना याद करते हैं इसलिए हाथ नहीं करते थे हैं? ऐसा हम इतना याद नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, देह के मित्र संबंधों को याद करते रहते हैं, जिससे ज्यादा दुख ही मिलता है, सुख तो बड़ा कम मिलता है। हम देहधारी को याद करते हैं, सदा सुख देने वाले को भूल जाते हैं और कहते हैं कि मन नहीं लगता है। दुख देने वाले से मन बुद्धि लग रहे हैं और सुख देने वाले से बुद्धि नहीं लग रही है। तो अब अपने आप को चेंज करना है, आत्मभिमानी बनना है, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं और प्यार से याद करना है। तो हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगा, ये है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम सबको बताया है। अब न मन से भटकना है, न तन से भटकना है, अब हमें अपना बुद्धि योग एक शिव बाबा से लगाना है। टाइम हो चुका है ज्यादा, एक मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे, फिर ये सत्र समाप्त होगा। ओम शांति।
मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, परमात्मा।
ओम शांति। हम सभी दीदी जी का धन्यवाद करेंगे करतल ध्वनि से, आपने बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा का परिचय हमें दिया।